Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
आज तक किसी ने इतना दान दक्षिणा नहीं किया है, वो नेवला कहने लगा कि रहने दो। ये मत बोलो कि आज तक इतना दान दक्षिणा किसी ने नहीं किया है, इनसे ज्यादा दानी मैंने देखा है। उनको भी बड़ा कौतूहल हुआ कि इसने कहां देख लिया, कहां देखा तुमने महाराज, युधिष्ठिर से अधिक दान देने वाला कहां देखा। वो नेवला कहने लगा कि सुनो, मैं इसी जंगल में रहने वाला प्राणी हूं, यहां से थोड़ी दूर एक ब्राह्मण की कुटिया है, वहां एक ब्राह्मण परिवार सीमित परिवार और संतोषी परिवार, इतना संतोषी परिवार है शिलोच्छवर्ती से उनका जीवन चलता है। शिलोच्छवर्ती जब किसान लोग खेत से फसल को काटते हैं और काट करके फसल को उठा लेते हैं, काटते वक्त जो पकी हुई फसल ज्यादा पक गई है और उसकी बाली आदि खेत में झड़ जाती है, गिर जाती है, एक एक बाली को किसान चुनता नहीं है, बड़े बड़े गट्ठर उठा करके ले जाएगा और जो बाली गिर गई है खेत में उसको चुन करके और उनके अंदर से जो निकलने वाला अनाज दाने हैं उनसे अपने जीविका चलाने का नाम है शिलोच्छवर्ती। वो नेवला कहने लगा कि ब्राह्मण परिवार इतना संतोषी है, शिलोच्छवर्ती से उनका जीवन चलता है। एक बार मैंने देखा कई दिनों तक उस ब्राह्मण परिवार को खाने को कुछ नहीं मिला, तब एक किसी किसान का खेत खाली हुआ, वहां से शिलोच्छवर्ती में कुछ जौ की बालियां मिली, उसको वो ब्राह्मण परिवार लाया, उसको साफ किया, अग्नि में सेक करके उसको पीसा, सत्तू बना दिया। अब कई दिन के बाद ब्राह्मण परिवार को खाने को मिला, परिवार में चार सदस्य थे, ब्राह्मण, उनकी श्रीमती, पुत्र और पुत्र वधु। जब वो बहुत दिनों के बाद आज खाने को अनाज मिला है, जो सत्तू तैयार किया गया, ब्राह्मण परिवार ने उसके पांच हिस्से किए, पांचवा हिस्सा अतिथि के लिए किया गया। जब वो ब्राह्मण ने पांचवा हिस्से तैयार कर लिए, वो ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ जो बड़ा व्यक्ति था वो अपने मकान से बाहर निकल करके देखता है, यदि कोई अतिथि आ रहे हैं हम खाने से पूर्व उनका सत्कार करें। इस दृष्टि से बाहर देखा तो दूर से कोई ब्राह्मण अतिथि आता हुआ दिखाई पड़ा, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, बुजुर्ग मालूम पड़ रहे हैं। धीरे धीरे जब वो अतिथि द्वार पर आ गए, बड़ी मधुर भाषा के द्वारा सम्मान करके उनको अंदर ले गए, आसन जल आदि दिया। अब वो ब्राह्मण आतिथ्य उस अतिथि से पूछने लगे, अतिथि देव भोजन पाएंगे, प्रसाद तैयार है। अतिथि कहने लगा कि मैं भूखा तो हूं, कर लेंगे। आसन पर बिठाया और अतिथि के निमित्त से जो पांचवा हिस्सा बनाया हुआ था वो उनको परोस दिया गया, मगर अतिथि इतना भूखा था कि जैसे कोई वो पंजीरी का प्रसाद मिले और एक बार ही मुंह में मार जाए, वो तो सत्तू को साफ कर गया और पेट तो खाली का खाली, भूख गई नहीं। आतिथेय ब्राह्मण ने समझा कि अतिथि अभी भूखा है, तृप्ति नहीं हुई, उनका स्वयं का जो भाग था वो भी उस ब्राह्मण को परोस दिया गया, उसको भी खा गया। फिर पूछा, महाराज और लेंगे? हां होगा तो चल जाएगा, इतने में ब्राह्मणी कहने लगी कि इशारा किया ये भाग भी परोस दीजिए। ब्राह्मणी का हिस्सा भी उनकी थाली में डाला, उसको भी सेवन कर गए। फिर भी उनकी दृष्टि बता रही थी कि और ले सकते हैं। पूछा, और लेंगे महाराज? थोड़ा चल जाएगा। अब रखना क्या था? वो पुत्र का जो भाग था, पुत्र ने इशारा किया कि पिताश्री अतिथि देव को परोस दीजिए। वो पुत्र का हिस्सा भी उनको परोस दिया गया। फिर भी देखते हैं कि अतिथि अभी भी अतृप्त है, और लेने की इच्छा है। और चलेगा? हां चल जाएगा। कल एकादशी थी इसलिए आज बड़ी जोर से भूख लगी थी। पुत्र वधु ने इशारा किया कि मेरा हिस्सा भी परोस दीजिए। वो पुत्र वधु का हिस्सा भी परोस दिया गया। पांचों हिस्से को अतिथि ब्राह्मण चट कर गया। अब इसके बाद वो आतिथ्य पूछते हैं, पंडित जी महाराज और? बस बस तृप्ति हो गई है, बहुत खाया तृप्ति हो गई। उनको भी संतोष हुआ कि चलो जो था वो सब काम में आया, लेकिन अतिथि हमारी सेवा से तृप्त हो गया। उसके बाद उस अतिथि ब्राह्मण ने हाथ धोए, कुल्ला किया, जहां पानी गिरा वो नेवला करने लगा कि मुझे प्यास लगी हुई थी और मैं भी पानी खोजते खोजते वहां गया। इतने में जब वो ब्राह्मण ने वहां पानी गिराया हाथ धोने कुल्ला करने के बहाने, तो वो जो पानी गिरा मैं उसको पीने की दृष्टि से पास में गया। ब्राह्मण के हटते ही मैं वहां गया, तब तक वो बालू मिट्टी थी, पानी को तो सूख गई, एक बूंद भी मुझे पीने को नहीं मिली, मगर वो जमीन गीली थी, आर्द्र युक्त थी, इसलिए ठंडी ठंडी लगी तो मुझे बड़ी शांति मिली। तो ठंडी मिट्टी देख करके मैं उस पर चिपक करके बैठ गया। पीने को नहीं मिला तो शांति शीतलता तो मिलेगी। जब मैं उस पर चिपक करके बैठा तो वो गीली मिट्टी मेरे शरीर पर चिपकी। ताज्जुब की बात यह थी भूदेव कि उतना जो मेरा शरीर का भाग था, जहां जहां पर वो गीली मिट्टी का स्पर्श हुआ, उतना मैं सोने का बन गया। मेरा रंग पलट गया, वो चर्म स्वर्ण चर्म बन गई। तब से मैं देखता हूं कि नीचे से आधा तो स्वर्ण का दिखाई पड़ता हूं और बाकी तो जैसा था वैसा का वैसा। आप जिन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ की बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना था कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। यह सोच करके मैं भी गया था कि वहां तो बहुत लोग अतिथि भोजन करेंगे, हाथ धोएंगे, कुल्ला करेंगे, पानी गिराएंगे, और उस पानी में जब मैं किलोले करूंगा तो पूरा का पूरा शरीर मेरा स्वर्णमय हो जाएगा। यह विचार करके मैं भी वहीं से आ रहा हूं, गया था, और जहां आप लोगों ने जल गिराया उस कीचड़ में मैंने खूब किलोले की। लेकिन स्वर्ण का होना तो मुश्किल, जो शरीर पर सोना लगा था वो भी कीचड़ से आवृत हो गया। आप लोग विचार करिए कि बड़ा यज्ञ किन का है। महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ बड़ा था या उस ब्राह्मण परिवार का यज्ञ बड़ा था? अतिथि सत्कार रूपी कहने का मतलब, अतिथि सत्कार इतना बड़ा यज्ञ होता है, जिस यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने सर्वस्व दान दिला दिया दुर्योधन के हाथों से, वो यज्ञ भी उस अतिथि सत्कार यज्ञ की बराबरी नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहां पर कहते हैं अतिथि सत्कार बहुत बड़ी चीज है। इष्ट और पूर्त कर्म से जो प्राप्त होने वाला फल है वो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा जिनके घर में अतिथि बिना खाए पिए रह जाए। पुत्र पौत्रांश सर्वान, सभी पुत्र पौत्र और तत् संबंधित जो साधन सुविधाएं हैं उनसे भी कभी उनको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। पुत्र हो जाएंगे, पौत्र हो जाएंगे, साधन हो सकते हैं, लेकिन तत्जन्य जो सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। पुत्र प्राप्त होना अलग बात है और पुत्र सुख प्राप्त होना दूसरी बात है। भागवत का प्रसंग आप सभी को याद है, राजा अंग को संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, उस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्त हुई। संतान के रूप में वेन आता है, पुत्र तो पैदा हो गया, पुत्र तो क्या कहेंगे, लड़का कहना चाहिए आज की भाषा में, वो लड़का वो बेटा प्राप्त तो हो गया, लेकिन क्या उस अंग को उस वेन के द्वारा सुख प्राप्त हुआ? आत्मदेव ब्राह्मण को धोखे से ही सही लेकिन मान्यता के रूप में पुत्र धुंधुकारी प्राप्त हुआ, तो क्या उस धुंधुकारी से आत्मदेव को सुख प्राप्त हुआ? और तो और, राजा दशरथ को पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्रीराम प्राप्त हो गए, अंशावतार से चार चार रूप लेकर के भगवान प्रकट होते हैं, परंतु क्या दशरथ को पुत्र सुख प्राप्त हुआ? ऐसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि ये पुत्र पौत्र आदि प्राप्त तो हो जाते हैं, परंतु यदि अतिथि का सत्कार न हुआ तो उसका इतना बड़ा दोष बताया गया कि प्राप्त होने पर भी तज्जन्य सुख उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये तो सर्वम ऋग्ते, ये सबसे प्राप्त होने वाला जो सुख है ये सारे के सारे उसके नष्ट हो जाते हैं जिस अल्प बुद्धि व्यक्ति के घर पर ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए रह जाए। इसलिए परिजनों ने कहा आप जाइए उस अतिथि का सत्कार, उनकी सेवा कीजिए। इस प्रकार से जब यमराज को मंत्रियों आदि ने परामर्श दिया तो यमराज नचिकेता के पास में गए, अतिथि सत्कार किया और इतने विनम्र शब्दों में उनसे क्षमा याचना करते हैं, आप ताजुब करेंगे। अब देखो जिन दोनों का मिलन होने जा रहा है, नचिकेता का और यमराज का अब मिलन होगा, जिसके लिए नचिकेता गया है उनसे अब मिलना हो रहा है। नचिकेता भी कितना महान है, जब तक मृत्यु को न देख लूं तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं है, ऐसा कोई नचिकेता? प्रतिपल मृत्यु अपने सामने चल रही है पर मृत्यु को देखने का समय किसके पास है? कितना बड़ा आश्चर्य है, देखना चाहे तो सबसे पहले मृत्यु को देख रहे हैं। प्रतिपल हर व्यक्ति के शरीर की मृत्यु आ रही है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बहुत अच्छी बात सुनाया करते थे, वो कहते थे कि लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं और उसमें बड़ी खुशियां मनाते हैं, मैं 50 वर्ष का हो गया, मेरा स्वर्ण जन्म दिवस है, षष्ठी पूर्ति मना रहे हैं, 75 वर्ष हो गए अमृत उत्सव मना रहे हैं और भाग्य से 100 वर्ष जी गया तो शताब्दी बनाने की तैयारी होती, बड़ी खुशियां मनाते हैं और कहते हैं कि मैं 50 का हो गया, मैं 75 का हो गया, मैं 100 का होने जा रहा हूं, और जिस दिन उसका जन्मदिन आता है बड़ी खुशियां मनाता है। पर सोचिए एक वर्ष के बाद में जब वही तिथि आती है, जन्मदिन आता है, तो वो खुशी मनाने का दिन है या बैठ करके रोने का दिन है? पहले तो उसको अपने गणित लगानी चाहिए, हिसाब लगाना चाहिए। जिस दिन मैं आया था 100 वर्ष के इस समय की पूंजी मेरे पास में थी, एक वर्ष जाते ही मुझे एक वर्ष का आलोश हो गया, मैं 99 वर्ष का रह गया। जब 10 वर्ष चले गए हैं तो 10 वर्ष का नुकसान मुझे हो गया, मैं सिर्फ 90 वर्ष का रह गया। 50 वर्ष चले गए हैं तो 50 का नुकसान हुआ, 75 वर्ष चले गए हैं तो 75 वर्ष का नुकसान हो गया, और बाकी पूंजी समय के रूप में कितनी बची हुई है उसका भी मेरे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लेख नहीं है कि सो ही हो जाओगे, 75 से क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गणित लगा करके देखना चाहिए साधक को कि इतने जो हमारी उम्र चली गई है, इस गई हुई उम्र का हमने कितना सदुपयोग किया। जीवन का सदुपयोग व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसको इस बात का बार बार ख्याल रहे कि पता नहीं ये जीवन तो काल के गाल में है, ये काल व्याल कब इसको निगल जाए, कोई ठिकाना नहीं। ये विचार करके जीवन में होने वाले जितने भी सत्कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, भगवत चिंतन, सत्संग, स्वाध्याय, साधना है, उसको देखना चाहिए कि हमने कितना किया है। यदि न भजन किया, न सत्संग स्वाध्याय किया, न कोई सत्कर्म किया शरीर के द्वारा, न सेवा किया, अब तक की जिंदगी सिर्फ 3 काम में चली गई, कमाना, सोना और खाना। जब जागृति में रहे, शरीर ने साथ दिया, कमाया, खाया और सो गया, ये 3 कार्य में ही यदि हमारी जिंदगी चली गई, तब तो समझिए कि जन्मदिन की खुशी बनाने का समय नहीं है, बैठ करके रोने का समय है। खुशी किस बात की, समय भी गया, शरीर की शक्ति भी गई, और ऐसे ही बर्बाद हो गए। जो खास पूंजी प्राप्त करनी थी उससे तो मैं वंचित रह गए। इसी स्थिति को विचार करते करते व्यक्ति को जब लाभ लेना हो जीवन का, तो एक खास करके बात को याद रखना चाहिए। किसी किसी मंच पर तो एक दोहा बोलते हैं, शायद कांदीवली में मैंने सुना, प्रवचन के बाद में सभी श्रोतागण इस दोहे को रोज प्रतिदिन बोलते हैं। 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। यदि अपने जीवन का कल्याण तुम्हें चाहिए तो 2 बात को कभी मत भूलना। किसको? प्रथम तो मृत्यु को न भूलो, और दूसरा भगवान को न भूलो। सच्ची बात तो यह कि जब मृत्यु याद आती है तो भगवान याद आएंगे। क्यों? संसार का ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको मृत्यु के मुंह से निकाल सके, बचा सके। एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं स्वयं काल के गाल में पड़े हुए हैं, सबको मृत्यु निकल रही है। तो संसार का कोई भी प्राणी पदार्थ आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता है। जो अज अविनाशी परमेश्वर है, वो भगवान ही एकमात्र मृत्यु से आपको बचा सकते हैं। इसलिए साधक को मृत्यु को सदैव याद रखना चाहिए। मृत्यु जब याद रहेगी तो संसार के पदार्थों से स्वतः वैरागी हो जाएगा, यह नियम है, स्वतः वैरागी हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, हमने खूब सत्संग किया, खूब विचार किया, परंतु पता नहीं हमारा तो वैराग्य सोया हुआ है, जागता ही नहीं है, सोया पड़ा है। खूब सोचते हैं लेकिन होता ही नहीं वैराग्य। आप कोई और तरीका हो, कोई उपाय हो तो बताइए, हमारा वैराग्य कैसे जागे? हमारा तो कहीं से राग हटता ही नहीं। भोजन ऐसा ही होना चाहिए, साड़ी शर्ट पैंट पीस ऐसे ही होने चाहिए, गाड़ी ऐसी ही होनी चाहिए, प्लेट भी सारी और ऐसी सुविधा बढ़ते रहने चाहिए। और मांग बढ़ती जाती है। महात्मा जी कहने लगे कि ठीक बात है, आप वैराग्य को जगाना चाहते हैं। हाँ महाराज, वैराग्य को तो मैं जगाना ही चाहता हूं, आपकी कृपा से जाग जाए। महात्मा जी बोले, आज मुझे कुछ सोचना पड़ेगा तुम्हारे वैराग्य के लिए, कल आना, कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो भक्त जब आया और कहा कि महाराज कैसे वैराग्य हो, कोई उपाय? वो महात्मा कहने लगे कि उपाय तो सोचा था लेकिन क्या करूं, एक बड़ी मुसीबत आ गई। जन्म पत्री मांग ली थी कि इसके वैराग्य लिखा है कि नहीं, महात्मा ने तो कहा रात्रि को बैठ करके तुम्हारी जन्म पत्री मैंने देखी तो सोचा कि तुमको क्या वैराग्य जगाएं, आज के सातवें दिन तो तुम्हारा अंतकाल है, शरीर जाने वाला है। वो भक्त के तो हौसले उड़ गए, सातवें दिन मेरी मृत्यु? हां ऐसा ही लिखा है कि सातवें दिन तो मृत्यु आएगी, कोई बात नहीं, भक्त मृत्यु तो आती ही है, संसार में कौन अमर रहता है, ये ताप है? जैसे पहले वाले गए हैं ऐसे तुमको भी जाना ही होगा। आज आश्रम में भंडारा है, चलो पहले भोजन करो। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो आज इच्छा ही नहीं हो रही है। अरे तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनी है, तुम्हारी मनपसंद मिठाई है। हमने भी यही सोचा था कि जब मृत्यु आ रही तो कम से कम भक्त को आश्रम का प्रसाद तो खिला दें। महाराज ने बहुत कहा तो बिना मन के पंक्ति में बैठ गया भोजन करने के लिए, लेकिन बार बार मृत्यु दिखाई पड़ रही है। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं खाइए, अरे सात दिन तो जीवो, उससे पहले ही मर जाओगे, कुछ तो खाओ। महात्मा जी ने बहुत कहा तो खाया, खा करके जब उठा तो महात्मा जी ने पूछा सब्जी में नमक कैसा था। तो मुझे तो कुछ आज ध्यान नहीं है कि नमक कैसा था। अरे आज भंडारी नमक डालना तो बिल्कुल ही भूल गया था, मुझे तो कुछ भी ख्याल नहीं महाराज नमक था कि नहीं था। ऐसी स्थिति क्यों बनी? वो मृत्यु को याद रखने से यह स्थिति बनी। जो मिल रहा है कैसा मिल रहा है ये सब सोचने की उसके पास पुरुषत नहीं है, एक ही सोच चल रही है, मृत्यु आ गई। तो जब मृत्यु याद आता है तो अपने आप बाकी सब छूटते जाते हैं, बिना छोड़े ही छूट जाएंगे, चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मृत्यु को सदैव साधक को याद रखना चाहिए। देखिए यमराज को देखने के लिए नचिकेता का भी कितना विलक्षण भाव है, यह भी इस कथा के अंदर छुपा हुआ एक रहस्य है। इसलिए नचिकेता के पास जब यमराज जाते हैं, तीन दिन से कुछ खाया नहीं है, मगर नचिकेता जैसा अगर कोई साधक होगा तो मृत्यु से डरेगा नहीं, मृत्यु से मुलाकात करना चाहता है। डरेगा तो वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, खा कमा करके सो करके जिंदगी गंवा दी, उस व्यक्ति को मृत्यु का डर लगता है। नहीं तो मृत्यु से मिलने की उमंग हो जाएगी, कब मरहूं कब पाए हूं पूर्ण परमानंद, कब मृत्यु आवे और परम आनंद की प्राप्ति हो, उससे मिलने की एक उमंग आ जाती है। नचिकेता की वही स्थिति है, आज यमराज से मिलन होगा, और जब इतना लक्ष्यवान साधक है, मृत्यु से लोग भयभीत होते हैं, और साधक के प्रधान लक्षणों में पहला लक्षण गीता का 16वां अध्याय जो देवी संपत्ति का वर्णन आया है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, सबसे पहला साधक के अंदर जो निर्भयता अभयता होनी चाहिए, वो अभयता नचिकेता के जीवन में दिखाई पड़ रही है। आ रहा है मृत्यु, निर्भय है, अब यमराज और नचिकेता का मिलन हो रहा है। मिलन होते समय भी देखने जैसा प्रसंग है। ये यमराज नचिकेता के गुरु होने जा रहे हैं, नचिकेता इनका शिष्य होगा। यमराज ही नचिकेता को आत्म उपदेश करेंगे, वरदान के माध्यम से संपूर्ण प्रश्नों का समाधान देंगे। परंतु देखिए अतिथि का कितना बड़ा महत्व है। ये गुरु भी अतिथि रूप में आए हुए शिष्य को प्रणाम करने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि अतिथि है। इसका अर्थ यह हुआ कि अतिथि का सर्वोपरि महत्व है। गुरु शिष्य के संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण संबंध है अतिथि और आतिथेय का। और जिस उज्जवल सिद्धांत को यहां पर देखने को हम लोग तैयार हैं, मगर घड़ी मना करती है कि आज नहीं दिखाएंगे, कल आपको दिखाया जाएगा। कितना सुंदर प्रसंग सामने आ रहा है, उसको कल हम लोग इस मन से विचार करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।